सब याद करते हुए आरवी की आंखें बरसने लगी। वो अनुपमा जी से लिपटकर रो पड़ी, जिससे अनुपमा जी पहले तो चौंक गई, फिर आरवी के मन की हालत समझते हुए उन्होंने उसको अपनी ममता के आंचल में छुपा लिया। रश्मि आरवी के गले लगकर भी खूब रोई, फिर किसी तरह उसको गाड़ी में बिठा दिया गया। दूसरे तरफ से रेहान बैठा, आगे सृष्टि बैठ गई और शान ने स्टीयरिंग संभाल लिया। अभिजीत जी बाकी आदमियों के साथ सबसे इजाज़त लेकर दूसरी कार में बैठ गए और गाड़ी वहां से आगे बढ़ ही गई। रश्मि जी और आलोक जी ने किसी तरह खुद को संभाला और भारी मन से अंदर आ गए। विदाई के साथ ही मेहमानों के विदा होने का सिलसिला शुरू हो गया, तो आरवी अनुपमा जी के साथ मिलकर उनके लिए मिठाई वगैरह पैक करने लगी। आलोक जी बाकी काम संभालने लगे, रजनी जी सबके गिफ्ट निकालकर देने लगी और उन्हीं सब में उन्होंने अपना मन बहला लिया। दोपहर तक सब मेहमान जा चुके थे। कुछ देर पहले तक जो घर मेहमानों से भरा था और जहां खूब रौनक जमी थी, अब वहां सन्नाटा पसर गया था। आरवी ने सबको फ्रेश होने को भेज दिया और खुद फ्रेश होकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। वैसे तो रेहान के भाभी के रिश्ते से उसको वहां जाना था, पर उसने यहां रुकने का फैसला किया ताकि रजनी जी और आलोक जी को अकेलापन ना लगे। उसने ही किसी तरह उन्हें नाश्ता करवाया, फिर थोड़ा आराम करने भेज दिया। उसके बाद उसने अंशु को उठाकर नहलाकर तैयार किया, उसे नाश्ता करवाया और घर में बिखरे काम समेटने लग गई। दूसरी तरफ वृंदा जी अपनी बहू और बेटे के स्वागत में लगी हुई थी। पहले बाकी लोग आए, उसके बाद रश्मि से साथ रेहान वहां पहुंचा। रो रो कर उसका चेहरा उतर गया था। रेहान ने बड़ी मुश्किल से उसको चुप करवाया था। वृंदा जी ने पहले दोनों की नज़र उतारी, फिर उन्हें तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और उन पर अक्षत और फूल बरसाते हुए नए जोड़े का स्वागत किया। सावित्री जी और अर्पिका जी चावल का कलश और आलते की थाल लेकर आ गई। सृष्टि घुली हुई हल्दी की थाल लेकर आई। रश्मि ने पहले अपने हथेलियों को हल्दी में डुबोकर दरवाजे के दोनों तरफ अपनी हथेलियों की छाप लगाई, फिर चावल के कलश को धीरे से अंदर की तरफ गिराते हुए जैसे ही आलते की थाल में पैर रखने लगी, भारी लहंगे को संभाल नहीं सकी और जैसे ही उसके कदम डगमगाए, रेहान ने तुरंत उसे थाम लिया। ये देखकर बाकी सब मुस्कुरा दिए। वहीं शान आत्मग्लानी से भर उठा। आज सही मायनों में उसे अपनी गलतियों और आरवी के दर्द, अधूरेपन और अधूरी ख्वाहिशों की टीस जो उसके मन में चुपती होगी, उसका एहसास हो रहा था। शादी तो उसने भी की थी, पर पति होने का कोई फर्ज कभी निभाया ही नहीं। फिर भी आरवी ने इतने वक्त तक उनके रिश्ते को संभाल कर रखा था और अब शान की बारी थी। शान मन ही मन फैसला कर चुका था कि अब अपना हर फर्ज निभाएगा, आरवी की कही अनकही सभी ख्वाहिशें पूरी करेगा, उसके अधूरेपन को मिटाएगा और अपने रिश्ते को संपूर्ण करेगा। उसे वो हर खुशी मिलेगी जो शादी के बाद उसे नहीं मिली। सब अंदर आ गए, पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, फिर मस्ती मजाक के बीच अंगूठी ढूंढने की रस्म पूरी हुई। कुछ और रस्में हुईं जिन्हें देखते हुए शान को अपनी शादी याद आ गई, जिसमें वो आरवी को चौखट पर छोड़कर ही अंदर आ गया था और शादी हुई थी, पर शादी के बाद कोई रस्म नहीं हुई थी क्योंकि उसने शादी मानने से ही इनकार कर दिया था। रश्मि इन रस्मों के दौरान कितनी खुश नजर आ रही थी, इससे वो आरवी के दुख का अंदाज़ा लगा रहा था। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बड़े ध्यान से सब रस्मों को देखने लगा। रश्मि को ढेर सारा गिफ्ट मिले। रस्मों के बीच आधा दिन निकल गया। उसके बाद रश्मि और रेहान को आराम करने भेज दिया गया, पर रश्मि के साथ रिश्तेदारों वाली औरतें भी चली गईं, तो बेचारी लेटकर कमर तक सीधी नहीं कर सकी। सब औरतें बैठकर अपनी ही बातों में लगी थीं और उन अजीबोगरीब बातों को सुनकर रश्मि का सर घूमने लगा था। कुछ देर बाद सृष्टि वहां आई और बाकी सबको बाहर भेज दिया। रश्मि ने अब जाकर चैन की सांस ली और बेड पर पसर गई। सृष्टि उसके पास आकर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, भाभी पहले कुछ खा लीजिए फिर आराम कर लीजिएगा, वरना अगर फिर बुलावा आ गया तो भूखी ही रह जाएंगी। मन नहीं अभी मेरा, रश्मि के चेहरे पर मायूसी थी, जिसे देखते हुए सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, जानती हूँ अंकल आंटी की याद आ रही होगी आपको, पर आरवी भाभी है ना उनके साथ, वो ध्यान रखेंगी उनका, इसलिए आप उनकी चिंता छोड़िए और थोड़ा खाकर आराम कर लीजिए, फिर उनसे बात कर लीजिएगा तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। रश्मि ने अब उसकी बात मान ली, थोड़ा सा खाना खाया और लेट गई, और थकान इतनी कि लेटते ही उसकी आंख लग गई। सृष्टि ने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया और दरवाज़ा बंद करके बाहर ही बैठ गई, ताकि कोई अंदर जाकर उसे डिस्टर्ब ना कर सके। करीब दो घंटे बाद सृष्टि वापस अंदर आई और रश्मि को जगाया, तो वो हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गई और घबराकर बोली, मैं सो कैसे गई और इतनी देर हो गई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? सृष्टि ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पहले शादी की थकान, सारी रात जागना, उसके बाद यहाँ भी इतनी रस्में हुई तो थक गई होंगी, और शरीर के लिए आराम बहुत ज़रूरी है। वैसे भी सब खाकर सोने में लगे थे, अब उठने लगे हैं तो मैंने आपको भी उठा दिया। सृष्टि की बात सुनकर रश्मि मुस्कुरा उठी। कुछ ही देर बाद उसका बुलावा आ गया, एक आध रस्में हुई, फिर वापस उसको रूम में भेज दिया गया। सबने डिनर किया, उसके बाद वृंदा जी ने सृष्टि को रश्मि को रेहान के कमरे में लेकर जाने को कहा, जिसे शान ने पहले ही डेकोरेट करवा दिया था। सृष्टि रश्मि को रूम में लेकर आई और चहकते हुए बोली, भाभी देखिए आपको आपका रूम कैसा लगा, भाई ने आपके लिए लूम रेनोवेट करवाया है और शान ने कितनी खूबसूरत डेकोरेशन करवाई है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। उसकी बात सुनकर रश्मि ने निगाहें घुमाकर रूम को देखा। बीच में पीछे की दीवार से लगा किंग साइज बेड, जिसके दोनों तरफ लैंप टेबल रखी हुई थी और उसी टेबल पर दोनों की सगाई वाली फोटो लगी हुई थी। पीछे की दीवार पर उन दोनों की, रेहान की फैमिली की, शान और रेहान की और रश्मि के पेरेंट्स की फोटो लगी हुई थी। वो दीवार यादों को संजोए हुए था। रूम का कलर रश्मि की पसंद का था। बेड के राइट साइड ड्रेसिंग टेबल, उसके साइड में दो लकड़ी के बड़े बड़े डिजाइनर कबर्ड, उसके साइड में ग्लास वॉल जिसके दूसरी तरफ बालकनी थी और वहां से समुद्र दिखता था। एक तरफ स्टडी टेबल और साथ में फाइल्स की रैक। लेफ्ट साइड में बाथरूम था। बेड से कुछ दूरी पर एक कांच का टेबल पर काउच भी लगा हुआ था। रूम को बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया था और आज की खास डेकोरेशन भी काबिले तारीफ थी। हवा में मदहोश करने वाली खुशबू खुली हुई थी जो मन को रोमांच से भर रही थी। सब कुछ बहुत प्यारा था। रश्मि के लबों पर सौम्य सी मुस्कान फैल गई। वहीं सृष्टि ने अब मुड़कर उसे देखा और अपनी बात आगे कहनी जारी रखी। भाभी, क्यों ना आज आप और मैं यहाँ साथ में मजे से सोएं और भाई को बाहर का रास्ता दिखा दें। कितना मजा आएगा ने उन्हें तड़पाने में। सृष्टि की आंखें शरारत से चमक उठी और उसने शैतानी मुस्कान लबों पर सजाकर उसको देखा। रश्मि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी पर बोली कुछ नहीं। सृष्टि ने उसको बेड पर बिठाया और खुद उसकी गोद में कुशन रखकर उसके ऊपर सर रखकर लेट गई और उसको अपनी बातों से हंसाने लगी। रेहान जब अपने रूम के बाहर आया तो थोड़ा चौंक गया। उसके हिसाब से सृष्टि को यहाँ होना चाहिए था पर वो नहीं थी और अंदर से खिलखिलाने और बातों की आवाज आ रही थी। रेहान ने हैरान परेशान निगाहों से अपने बगल में खड़े शान को देखा तो उसने नासमझी में अपने कंधे उचका दिए। उसके बाद उसके गले लगते हुए बोला, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ तो अब मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। रेहान उसको रोकना चाहता था पर फिर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। मल्होत्रा फैमिली पहले ही निकल गई थी, अब शान भी चला गया। उसके जाने के बाद रेहान ने रूम का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा एकदम से चौंक गया क्योंकि रूम की सब लाइट्स बंद थी पर आवाजें अब भी आ रही थी।
रेहान ने लाइट्स ऑन की और बेड की तरफ निगाहें घुमाई तो और ज्यादा चौंक गया। सृष्टि पैर लटकाए सोई हुई थी और रश्मि बैठकर मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेर रही थी और दोनों गप्पे लड़ाने में उतने मग्न थे कि न उन्हें लाइट्स ऑन होने का आभास हुआ और न ही रेहान के आने का। ये नज़ारा देखकर बेचारे रेहान का सर घूम गया। अगले ही पल वो गुस्से में दनदनाते हुए उनके पास आया और सृष्टि को घूरते हुए हल्के गुस्से में बोला, सृष्टि, तू इस वक्त यहाँ मेरे रूम में मेरे बेड पर मेरी वाइफ के साथ क्या कर रही है? उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि बोलते बोलते चुप हो गई। उसने सर घुमाकर उसको देखा और बेफिक्री से बोली, ये रूम आपका है, बेड भी आपका है, पर मैं यहाँ अपनी भाभी से बातें कर रही हूँ और आज हम दोनों साथ में सोने वाले हैं, तो आप अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लीजिए और जाते हुए लाइट्स बंद करते जाइएगा। हमें अपनी इम्पोर्टेंट बातों में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सृष्टि का जवाब सुनकर रेहान आंखें बड़ी बड़ी करके अचंभित सा उसको देखता ही रह गया। फिर उसने रश्मि को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रेहान का सर घूम गया। उसने बांह पकड़कर सृष्टि को जबरदस्ती बेड पर से नीचे उतारा और कमरे से बाहर लेकर जाते हुए खींचते हुए बोला, नेगने बहने पैसे या कुछ और चीज लेती हैं और एक तू है कि मेरी बीवी पर ही हाथ साफ करने में लगी है। चुपचाप जाकर अपने रूम में सो, यहां मैं रहूंगा अपनी वाइफ के साथ और मुझे आज की रात हमारे बीच किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो कबाब में हड्डी बनना बंद कर और जाकर अपना खुद का कबाब सेक। रेहान ने उसको अपने रूम से बाहर निकाला और झट से दरवाजा लॉक कर दिया। सृष्टि ने मुंह फुलाकर बंद दरवाजे को देखा और गुस्से से बोली, बीवी के आते ही बहन को भूल गए, मुझे अपने रूम से बाहर निकाला। ठीक है, मेरा भी वक्त आने दो, फिर मैं भी आपको दूध में मक्खी जैसे निकालकर बाहर फेंक दूंगी और साथ ही वो गर्म दूध भी आपके सर पर उड़ेल दूंगी। सृष्टि बाहर से बदबड़ाती रही पर रेहान ने दरवाजा नहीं खोला। जब बाहर शांति पसर गई तब कहीं जाकर बेचारे ने चैन की सांस ली और अब उसने सामने देखा तो रश्मि अब भी उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी, जिसे खींचते हुए रेहान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, बहुत मजे ले रही हो तुम मेरे उस शैतानों की अम्मा के साथ मिलकर, मुझे परेशान कर रही हो और मेरी हालत पर मुस्कुरा भी रही हो। बहुत तड़पाने का शौक चढ़ा है तुम्हें, अभी बताता हूँ तुम्हें। बोलते हुए रेहान तेज कदमों से चलकर उसके पास आ गया और जैसे ही रश्मि पर झुका वो तुरंत दूसरे तरफ खिसक गई और हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, सब तो तुम्हारी बहन का प्लान था, उसने ही सब किया, तो तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? रेहान अब उसके पास बैठ गया और नाराजगी से मुंह फुलाते हुए बोला, टू बी कंटिन्यूड।